संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
बारह भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें कल मुनियों के 28 मूल गुणों की चर्चा आरंभ की थी, जिनमें से दो मूल गुण तो ऐसे हैं जो उनके भोजन से आहार से ही संबंध रखते हैं। मुनिराज सारे गृहस्थों से सर्व प्रकार के संपर्क तोड़कर, नगरवास छोड़कर वनवासी इसलिए हुए हैं क्योंकि इन रागी देशियों के संपर्क में रहकर वीतरागता की जैसी आराधना होना चाहिए वैसी आराधना होना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने सुंदरतम नगरों का वास छोड़कर वनवास को स्वीकार किया है। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें उनको श्रावक के घर पर आना, श्रावकों से संपर्क होना अनिवार्य है, और वो है उनका आहार। आहार के बिना देह की स्थिति संभव नहीं है, इसलिए निरंतराय नवदा भक्ति पूर्वक कोई आहार देने वाला मिले तो 40, 232 अंतराय टाल करके भी भोजन को स्वीकार करते हैं। इसलिए उन वनवासी संतों को नगर में आना अनिवार्य हो जाता है, गृहस्थों के घर, श्रावकों के घर। और जैसी उनकी विधि है, जिसकी चर्चा कल की थी, कि वे इस तरह का लगा हाथ का निशान बनाकर आते हैं, जिससे श्रावक समझ लेते हैं कि ये आहार की कामना से आए हैं। यदि उन्हें भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो हो सकता है वो सारे जीवन गृहस्थों के समागम में आते ही नहीं। और ऐसे उदाहरण भी जनवाणी में हैं। बाहुबली ने दीक्षा ली और एक साल तक तपश्चर्या में ध्यान में खड़े रहे, उन्हें आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई भोजन की, भोजन को निकले ही नहीं तो किन्हीं गृहस्थों के समागम में वो आई ही नहीं। भगवान ऋषभदेव ने भी दीक्षा ली तो 6 महीने तक वे किसी श्रावक के समागम में आए ही नहीं। लेकिन आहार एक ऐसी अनिवार्य स्थिति है कि जब वे स्वयं बनाते नहीं, खाते नहीं, कमाते नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था रखी नहीं और पेट का गड्ढा भरना आवश्यक है तो श्रावकों के पास उन्हें जाना आवश्यक है, इसलिए वो नगर में आते हैं। श्रावकों के पास जाना अनिवार्य है लेकिन खतरे से खाली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रागी देश में पगे हुए श्रावक उन बीतरागी संतों को भी अपने राग में समेटे बिना रहेंगे नहीं। इसलिए जिस प्रकार एक सैनिक जब बॉर्डर पर जाता है लड़ाई के मैदान में तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, कवच वगैरह को ध्यान करके जाता है, ऐसी चीजें पहन कर जाता है कि जिस पर गोलियों का असर नहीं हो, तलवारों का असर नहीं हो, ऐसे ही मुनिराज जब आहार के लिए गृहस्थों के घर जाते हैं तो सबसे पहले तो मौन का कवच पहन के जाते हैं, मौन लेके जाते हैं। ये नियम है कि जब वे आहार के लिए उठें तो उसी वक्त से मौन ले लेते हैं और जब तक आहार न हो जाए त तब तक उस मौन को कायम रखते हैं। इसलिए किसी से कुछ बोलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बोलना जो है ना, ये हमें दूसरों से जोड़ता है और उन्हें किसी से जुड़ना ही नहीं है, तो फिर बोलने का कोई प्रयोजन रह नहीं जाता है। आहार का भी किसी से याचना करनी ही नहीं है, मांगना ही नहीं है, तो भी बोलने का कोई कारण रह नहीं जाता है। किसी भी प्रकार की अपनी इच्छा को उन्हें व्यक्त करना ही नहीं है। वाणी तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए ही होती है ना, इसलिए वे मौन धारण करके जाते हैं। मौन एक ऐसा कवच है कि दूसरों से संपर्क को काटने का सबसे बड़ा साधन है। यदि हमें दूसरों से संपर्क नहीं रखना है तो मौन से बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। कोई कितना ही बोले हमसे लेकिन हम जवाब नहीं देंगे तो कब तक बोलेगा। लेकिन मौन का अर्थ जवाब नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हमें सारों से जवाब दे दें, लिख के जवाब दे दें, सिर हिला के हाँ कर दें ना कर दें, तो मौन क्या रहा। कोई ये भाषा बोलने से कोई पाप थोड़ी होता है। पाप तो इस बात का है कि मुझे किसी दूसरे से संपर्क नहीं करना है, और यदि हम इशारों में बात करने लग गए तो हम तो वैसे गूंगे हो गए, जैसे गूंगे लोग इशारों से बात करते हैं और बोल नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है किसी भी तरह का इशारा नहीं करना, हाँ नहीं करना, ना नहीं करना। कोई आदमी ये हमसे बोले कि आप साहब हमारे यहां पधारेंगे, तो हमने यदि मुंह से हाँ नहीं कहा और सिर हिलाकर हाँ कह दिया तो बात एक ही हुई ना। मुंह से ना नहीं कहा और सिर हिलाकर ना कह दिया तो बात एक ही हुई ना। बल्कि हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उस बात को हमने सुनी भी है कि नहीं सुनी, उसे इस बात का भी भरोसा ना हो, वो सच्चा मौन है। इस बात की मौन का वास्तविक अर्थ क्या है, उसको इतना भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बात सुन तो ली है, भले ही हाना नहीं जवाब दिया है लेकिन मेरी बात इन तक पहुंच गई है। जैसे पत्थर की मूर्ति होता है ना, ऐसे ही उसको ये शंका बनी ही रहना चाहिए कि अपनी धुन में मगन थे तो इनने मेरी बात सुनी भी है कि नहीं भी सुनी है। ऐसी जगत से अनसुनी का नाम है मौन, और अपनी तरफ से किसी भी रूप में किसी भी भाव को व्यक्त करना ये भी मौन का भंग है। कि ये मेरे को तुम्हारी परिणति अच्छी लगी या नहीं लगी, यदि मेरी वाणी से नहीं और काया से भी किसी तरह से व्यक्त हो गई बात, तो एक तरीके से वो मौन भंग हो गया। इस तरह से मौन का कवच पहनकर वो ग्रस्तों के बीच में आते हैं। 90% तो सुरक्षित हो गए, फिर भी जो नवदा भक्ति से उन्हें पड़गाहन करते हैं तो उसमें भी वो कई अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके आते हैं, जिन्हें शास्त्रों में वृत्त परिसंख्यान कहते हैं। जैसे भगवान महावीर जब आहार को निकले थे तो उन्होंने ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा ली थी कि जो बेड़ियों में बंधी हुई हो, ऐसी कोई महिला हो जिसके बाल बने हुए हों, बिल्कुल घोंट दिए गए हों, और बहुत सी अटपटी बातें, तो मैं आहार लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा। और ये बात सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं जानता है, यानी वो किसी भी तरीके से कहीं भी इस बात के लिए किसी को आश्वस्त नहीं करना चाहते हैं कि यदि तुमने मुझे विधि पूर्वक पड़गा भी लिया तो मेरा आहार तुम्हारे यहां हो ही जाएगा। फिर भी आखिर गए तो है ना आहार करने के लिए, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके कोई व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें पड़गाह ले तो खड़े खड़े आहार लेकर के वापस हो जाते हैं। मेरे चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है कि दो रोटियां खाना है तो बैठकर शांति से क्यों नहीं खा लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेने में क्या दम है। लेकिन जब गंभीरता से विचार करते हैं तो एक बात एकदम ध्यान में आती है कि कहां बैठे, गृहस्थ का घर कोई बैठने लायक जगह है कि जो वहां आराम से बैठे, आराम से बैठ के भोजन कर ले। अरे जिस घर को छोड़कर, जिस अपने घर को छोड़कर वो नग्न दिगंबर हुए हैं और वनवासी हुए हैं, वो दूसरे के घर में जाकर बैठने का सवाल ही कहां खड़ा होता है। एक व्यक्ति और पत्नी से जब नोक झोंक होती थी तो एक बार उसके मुख से निकल गया कि तू मुझे बहुत परेशान करती है, अब तो मैं साधु बन के दीक्षा लेके चला जाऊंगा। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो उस पर जादू जैसा असर हुआ कि कहीं ये छोड़ के चले गए और इन्होंने दीक्षा ले ली तो मेरी हालत क्या हो जाएगी। तो बेचारी एकदम उसकी आज्ञा मानने को तैयार हो गई, अपनी जिद छोड़ दी। जब उस आदमी ने ये देखा कि ये मेरा हथियार तो बहुत ही कामयाब हथियार है और बातों में मैं कितना ही समझाता हूं, मनाता हूं, डांटता हूं, फटकारता हूं, यहां तक कि लड़ने झगड़ने को भी तैयार हो जाता हूं, मारपीट पे भी उतर आता हूं, ये मेरी अपनी जिद नहीं छोड़ती है। लेकिन इस एक वाक्य से ही इसने अपनी जिद छोड़ दी। तो अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए उसने हर बात में उस हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो यहां तक बात आ गई कि जरा जरा सी बात पर उसने कहा एक गिलास पानी लाना, उसने कहा जरा रुको अभी लाती तो हूं, तो मैं तो दीक्षा लेता हूं। बेचारी दौड़ के जाके पानी ले आए। आखिर धीरे धीरे वो इतनी परेशान हो गई उनके दीक्षा लेने वाले हथियार से, तो एक संत गांव में आए हुए थे उनके पास गई और अपना दुख रोती हुई बोली कि मेरे पति तो इतने बैरागी हैं कि मैं ही जानती हूं कि मैंने कैसे बांध के मुश्किल से उन्हें रखा है, यदि मैं उन्हें बांध के न रखती अपने राग से सर प्रकार की अनुकूलता से तो न मालूम अब के कब तक दीक्षा ले गए होते। संत तो पहुंचे हुए थे, वो इस बात को बहुत गहराई से समझते थे, जानते थे कि ऐसा कहीं होता है कि जिसको अंदर में वैराग्य आ जाए तो वो किसी दुनिया के रोकने से रुकता नहीं है। यदि वैरागी लोग रोकने से रुकते होते तो आज तक कोई आदमी दीक्षा ले ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसी कौन माँ बहन और पत्नी है जो पति को राजी खुशी ये स्वीकृति दे दे के हाँ जा तुम दीक्षा ले लो। ऐसी माताएं बहनें तो आपको इस दुनिया में बहुत मिलेंगी जो युद्ध के मैदान में जाते हुए पति को तिलक करके ये कहें कि तुम्हारी छाती में 25 गोलियां लगी होंगी तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पीठ में एक गोली नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे मर जाने के बाद में गौरव से मर तो सकूंगी, सती तो हो सकूंगी, लेकिन पीठ में गोली लगी यानी तुम युद्ध के मैदान में से भागे मरने के भय से, तो फिर तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। कहने का आशय, मरने के लिए युद्ध में मैदान में भेजने वाली माताएं और पत्नियां तो बहुत मिल जाएंगी। राजस्थान का तो एक ऐसा उदाहरण है चूनाबत का, कि उसकी आज ही शादी होके आई थी और वहां से ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उसी दिन उसे युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। जब वो बार बार जाता था तो मुड़ मुड़ कर अपनी पत्नी की तरफ देखता था, तो पत्नी ने कहा, क्यों, क्या बात है, क्या बात है? तो उसने कहा कि तू मेरी अपने को मेरे को कोई निशानी दे दे जिससे मैं तेरी याद आएगी तो मैं उसे देख लिया करूंगा। तो उसने कहा कि ये इनको इतना राग है मेरे से कि मेरे राग के पीछे जो युद्ध के मैदान में ढंग से लड़ नहीं पाएंगे और आधे मन से लड़ेंगे तो हारना तो नक्की है ही, मारे भी जा सकते हैं। इसलिए इनका जो चित्त विभक्त है, दो जगह बटा हुआ है, लड़ाई में और मेरे में, किसी भी तरीके से इसको दूर करना चाहिए। तो उसने कहा मैं निशानी भेजती हूं, और उसने तलवार से लेकर अपनी गर्दन काट के एक थाली में गर्दन रख के और दासी के हाथ उसके पास भेज दी कि अब तुम मेरा कोई विकल्प नहीं करना, अब तो मैं नहीं हूं ना, अब तुम दिल लगाकर लड़ सकते। कहने का मतलब, ऐसी राजपूतनियों के उदाहरण तो इस राजस्थान में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई इतिहास में ऐसा बताए कि कोई व्यक्ति दीक्षा लेने जा रहा हो तो उसकी माँ ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बहन ने खुशी खुशी उसे विदा किया हो कि जाओ तुम दीक्षा ले लो, सब ने रो रो कर उसे पूरी तरह रोकने का ही प्रयत्न किया होगा। और दूसरों के रोकने से यदि दीक्षार्थी रुक जाते होते तो आज तक एक भी आदमी दीक्षा नहीं ले सकता था। जिसको असली वैराग होता है वो तो दीक्षा लिए बिना रहता नहीं है, किसी के आंसू उसे किसी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। आंसू तो उन पर असर करते हैं जिनके अंदर राग हो, जिनका राग अंदर से टूट गया है उन पर इन आंसुओं का कोई असर होता नहीं। तो जब वो बार बार ये धमकी देने लगा कि तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं दीक्षा ले लूंगी, तो परेशान उस महिला ने महाराज से पूछा कि महाराज मेरे पति इतने वैरागी हैं कि मैं जानती हूं मैंने कैसे रोक रखा है, अन्यथा वे कभी के दीक्षा ले लिए होते। तो महाराज तो समझते थे सब बात, इसमें कुछ दम नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं एक मंत्र तुझे देता हूं, और जब भी तेरे पति को बैराग गाए और वो तेरे से दीक्षा लेने की बात करें तो ये मंत्र तू उन्हें सुना देना, तो उनका बैराग काफूर हो जाएगा। और वो मंत्र क्या था? कुछ नहीं, ये था एक दोहा, उन्होंने उसे सिखाया कि घर छोड़े यदि हरि मिले, अबहू छोड़ो कंत, घर छोड़े घर घर फिरो तो कबहू न छोड़ो कंत। हे पति देव, यदि तुम्हें घर छोड़ने से भगवान मिलते हैं, आत्मा का दर्शन होके, आत्मा का ध्यान होके तुम स्वयं पर्याय में भगवान बनते हो, तो देर मत करो, अभी ले लो, अभी जाओ। इतना बढ़िया काम का मौका फिर द्वारा कभी जिंदगी में मिले या ना मिले। और यदि तुम एक घर छोड़कर और घर घर के चक्कर काटने लग जाओ, दूसरों के घरों में चक्कर काटने लग जाओ, तो मेरी एक सलाह मान लेना, कि अपने घर को कभी नहीं छोड़ना। वो बेचारी है ना, बिना पढ़ी लिखी महिला इसका अर्थ तो समझती नहीं थी। यदि वो समझती होती तो कभी ये मंत्र पढ़ के नहीं सुनाती, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि घर छोड़े यदि हरि मिले तो अब ही छोड़ो कंत, कि अभी चले जाओ। वो ऐसा कह नहीं सकती थी, वो तो समझती थी ये मंत्र है वे बोल, लेकिन पति तो पढ़ा लिखा था ना, वो समझ गया कि ये कह रही है यदि भगवान की प्राप्ति तुम्हें होती है, आत्मा का अनुभव होता है, भगवान बनते हो तो अभी छोड़ दो। माने इसने परमिशन दे दी, और चूंकि उसे वैराग्य तो था नहीं, जाना तो था नहीं, ख्याल है ना, वो तो धमकी दे रहा था, तो उसका वैराग्य ठंडा हो गया और वो चुप हो गया। तो उसकी समझ में आ गया कि मंत्र बहुत बढ़िया है, और जब जब वो उसको वैराग्य हो गए और जब वो इस तरह की बात करे तब वो ये मंत्र पढ़ के सुना दे और उसका वैराग्य ठंडा हो। मेरे कहने का आशय यह है, एक घर छोड़ के यदि घर घर फिरना है तो घर क्यों छोड़ना। एक घर का एक कमरे का घर छोड़कर और गांव गांव में घर बसाना है, जहां रहें वहीं पर एक घर बसाने हैं धर्मशाला के नाम पर और अनेकों नाम से, तो इससे एक घर छोड़ने से क्या फायदा। ये 100 घर बना लिए, गांव गांव में घर चाहिए। जैसे बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं ना, तो उनका अपने जयपुर में भी घर है, तो उनका एक संबेसकर में भी एक बंगला बना लिया, एक गिरनार जी में भी बना लिया, एक पालीताना में भी बना लिया, एक सोनगढ़ में भी बना लिया। क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले राजाओं महाराजाओं के भी होते थे। जहां कोई संस्था खड़ी हुई वहीं एक बंगला सेठ लोग अपना बना लेते हैं। आज भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं ना, क्यों। तो जैसे परिग्रहधारी सेठों का ये प्रवृत्ति है कि 10-5 बंगले तो वे जगह जगह पर ऐसे बना ही लेते हैं, ऐसे ही इन गृह त्यागियों में भी ऐसी प्रवृत्तियां देखने में आ रही हैं कि वे सेठिया 2-5 जगह बनाते होंगे, ये तो गांव गांव में बनाने के लिए तैयार हैं। उनका बस चले तो देश में एक ऐसा एक भी गांव ना रहे जहां उनका उनके नाम का उनका जिसमें उनका नाम लिखा हो, प्रेरणा के नाम से, भावना के नाम से, आशीर्वाद के नाम से। क्यों उनको ये महामंत्र सुनाने वाला कोई आज तक नहीं मिला। कौन सा, कि घर छोड़े यदि हरि मिले तो अब हूँ छोड़ो कंत, और घर छोड़े घर घर फिरो तो कब हूँ न छोड़ो कंत। तो जो मुनिराज अपना घर त्याग करके गए हैं, वे किसी दूसरे ग्राहक श्रावक के घर में जाके कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए वे बिना बैठे ही खड़े खड़े वहां से आहार लेके जल्दी वापस हो जाते हैं। और भी इस बात में क्या रहस्य है वो अगले व्याख्यान में। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।